हॉलीवुड में भेदभाव।
प्रिय श्रोताओ, कार्यक्रम हॉलीवुड में भेदभाव के करने कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम हॉलीवुड में बनने वाली अमेरिकन हिस्ट्री एक्स फिल्म पर चर्चा करेंगे। मरियम मेहरदादी और मोहम्मद अली गुमी का सलाम स्वीकार कीजिए।
अमेरिकन हिस्ट्री एक्स फिल्म को टोनी के ने वर्ष 1998 में बनाया था। ये फिल्म लगभग 2 घंटे की है। ये 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक की बेहतरीन फिल्म है। अमेरिकी समाज में काले व गोरे लोगों के मध्य जो माहौल है, उससे इस फिल्म में दिखाया गया है। अमेरिकी हिस्ट्री एक्स फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार है। एक घर का अभिभावक व बाप विनियर्ड नाम का एक गोरा इंसान होता है। विनियर्ड अग्निशमन दल का एक कर्मचारी होता है। काले लोगों की बस्ती में ड्यूटी के समय उसे मार दिया जाता है। मादक पदार्थ बेचने वाले एक अश्वेत व्यक्ति द्वारा संभवतः उसकी हत्या कर दी जाती है। ड्रिक विनियर्ड का सबसे बड़ा बेटा होता है। जब काले लोगों की बस्ती में ड्रिक के पिता विनियर्ड की हत्या कर दी जाती है, तो वो काले लोगों से नफरत करने लगता है। ड्रिक का छोटा भाई डेनी पूर्ण रूप से अपने बड़े भाई के विचारों से प्रभावित होता है और वो एक नस्ल भेदी बन जाता है। ड्रिक काले लोगों से बहुत ही नफरत करता है। वो उन 2 काले जवानों की हत्या कर देता है जो उसकी गाड़ी चुराना चाहते हैं। इसके बाद ड्रिक को हत्या करने के आरोप में 3 साल जेल की सजा हो जाती है।
ड्रिक जब जेल में होता है तो वहाँ वो 2 लोगों के व्यवहार को देखता है। एक काला व्यक्ति जो उसके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करता है और एक गोरा जो नस्ल भेदी होता है। जब वो जेल में इन 2 व्यक्तियों को देखता है तो समझ जाता है कि उसने गलत रास्ता चुना है और अमेरिकी समाज में जो नफरत, हिंसा और नस्ल भेद व्याप्त है, उसके लिए काले और गोरे दोनों जिम्मेदार हैं। ड्रिक जब जेल से रिहा हो जाता है तो वो एक नस्ल भेदी की तरह ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता। ड्रिक अपने छोटे भाई डेनी को भी समझाता है कि वो नस्ल भेद को छोड़ दे, परंतु ठीक उस वक्त जब शांति का माहौल होता है तो एक काले नौजवान द्वारा स्कूल की लैट्रिन में ड्रिक के छोटे भाई डेनी की हत्या कर दी जाती है। मानो डेनी अपने बड़े भाई ड्रिक द्वारा की गई 2 काले जवानों की हत्या का बदला होता है।
लॉस एंजलिस में इस समय नस्ल भेद और न्यू नाजी की जो भावना है, उस संवेदनशील मुद्दे को अमेरिकन हिस्ट्री एक्स फिल्म उठाती है। ये फिल्म अमेरिकी जवानों की परेशानी की बात करती है और श्रेष्ठ होने की उस नस्ल भेदी भावना और नफरत के निकट पहुंचती है जो 20वीं शताब्दी के 90 के दशक में अमरीकी जवानों के मध्य व्याप्त होती है। कुछ युवा जो अपने जीवन में विफल हो चुके होते हैं, वो ड्रिक और डेनी की भांति नस्ल भेदी गुटों में शामिल हो जाते हैं। अमरीकी समाज में नस्ल भेद की जो जड़ें और उसके दुष्परिणाम हैं, ये फिल्म उनकी ओर संकेत करती है। इसी प्रकार ये फिल्म जिस चीज़ को दिखाती है वो एक कटु वास्तविकता है और वो जिन प्रश्नों को उठाती है उनका जवाब कोई आसान नहीं है। वास्तव में फिल्म नस्ल भेद को एक ऐसी समस्या मानती है जिसका अंजाम एक अनपेक्षित त्रासदी होगा।
अमरीकी समाज में जो नस्ल भेदी नफरत व्याप्त है, उसके बारे में अमेरिकन हिस्ट्री एक्स हालिया दशकों की हॉलीवुड की सबसे अच्छी फिल्म है। अमेरिकी समाज में जो नफरत व्याप्त है उसकी कोई सीमा नहीं है। वो इतनी विस्तृत है कि ज़िंदगी की हर चीज़ को तबाह कर देगी। काले गोरों से और गोरे कालों से नफरत करते हैं। यही अमेरिकी समाज और उसका इतिहास है।
फिल्म जिस नफरत को दिखाती है उसके बहुत अधिक दुष्प्रभाव हैं। अमेरिकी समाज में जो नफरत व घृणा है, उसके लिए काले और गोरे दोनों जिम्मेदार हैं। ये नफरत अमेरिकी समाज में मौजूद है और कोई चीज़ इसे अमेरिकी समाज से ख़त्म नहीं कर सकती। ये फिल्म अमरीकी समाज में मौजूद एक कटु वास्तविकता को दिखाती है। ये नफरत है जो अमरीकी युवाओं के स्थान पर ज़िंदगी कर रही है। नफरत को ख़त्म करने के लिए ये फिल्म जो रास्ता पेश करती है वो ये है कि काले और गोरे दोनों नफरत को छोड़ दें। Thank you.
कार्यक्रम के इस भाग में हम इस फिल्म के एक सीन की समीक्षा करेंगे। ये सीन विनियर्ड के घर का होता है जो फिल्म में 98 मिनट से आरंभ होता है। ड्रिक 3 साल के बाद जेल से छूटता है और जेल में जो कुछ उसके साथ हुआ रहता है वो उसे अपने छोटे भाई डेनी को बताता है और उससे कहता है कि वो अपने स्कूल के शिक्षक सोइनी की बात सुने और अमरीकी इतिहास पर एक लेख लिखे। डेनी आलेख लिखता है और उसमें वो उस हिंसा व गुमराह की जड़ को ढूंढता है जिसकी ओर वो और उसके भाई चले गए होते हैं। इसी तरह फिल्म में अतीत की बात और ड्रिक के बाप का समय दिखाया जाता है जिसमें सब एक साथ खाना खा रहे होते हैं। यह ड्रिक के बाप के मरने से पहले का समय होता है। उस वक्त की स्थिति ड्रिक के समय से बहुत भिन्न भी है जब ड्रिक और डेनी अपने समय में नस्लभेद से प्रभावित हो चुके हैं। ये सीन विनियर्ड के एक सामान्य परिवार के सदस्यों के दृश्य को पेश करता है जो एक साथ मेज पर खाना खा रहे हैं। मेज के एक सिरे पर बाप और दूसरे सिरे पर माँ और उसके बीच में बच्चे बैठकर खाना खा रहे हैं।
बाप कहता है, ठीक है, आज रात को खेल के समय जब एक दूसरे से मिलेंगे। ड्रिक खाना खाने के साथ साथ किताब भी पढ़ता रहता है। उसका बाप एक नज़र उस पर डालता और कहता है, तुम खेल की वजह से उतावले हुए हो। ड्रिक कहता है, मेरा इम्तिहान है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। मैं परेशान हूँ, इम्तिहान की मेरी तैयारी नहीं है। बाप कहता है कि इस बात से डरते हो कि नंबर कम आएंगे, शायद अच्छे नंबर आएँ, क्या पता। इस पर ड्रिक कहता है, स्वीनी बहुत अच्छे शिक्षक हैं, विश्वास करें कि अब तक उनके जैसा शिक्षक हमें नहीं मिला। उनके पास डॉक्टरेट की डिग्री है पर नहीं पता कि वो किस तरह हाई स्कूल वालों को पढ़ाते हैं। वो दूसरे शिक्षकों की भांति नहीं है। बाप कहता है, उसने कौन सा लेख पढ़ने के लिए कहा है। ड्रिक कहता है, इस बार का इम्तिहान स्थानीय लड़के किताब के बारे में है। बाप कहता है, स्थानीय लड़का क्या है, उसे मैं नहीं जानता, किस बारे में है। ड्रिक कहता है, ये किताबें काले के बारे में हैं, हम इस पूरे टर्म में कालों का साहित्य पढ़ रहे हैं।
बाप कहता है, क्या ये टर्म कालों के इतिहास के बारे में है। ड्रिक कहता है, नहीं, ये सुझाव स्वीनी का था, यह हमारे टर्म का भाग है। बाप कहता है, अजब क्या बात है। ड्रिक कहता है, क्या। बाप कहता है, कुछ नहीं, जानते हो जहाँ भी देखता हूँ यही है। ड्रिक कहता है, क्या। बाप कहता है, कालों का पक्षपात, किताब पढ़ो और अच्छा नंबर ले आओ। केवल एक बात याद रखना कि जो कुछ तुमसे कहा जाए उसे आंख बंद करके मान मत लेना। ड्रिक कहता है, जानता हूँ, परंतु बात क्या है। बाप कहता है, ये सारी बातें काले और गोरों को बराबर व समान करने के लिए हैं, परंतु ये आसान नहीं है। अब तुम ये किताब पढ़ रहे हो तो इस टर्म की दूसरी किताबें क्या होंगी। वो अच्छी नहीं हैं क्योंकि ये बात तुमसे डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त महोदय ने कही होगी। कानों के साहित्य के बारे में किताब की वजह से दूसरी किताबों को न पढ़ो, क्या ये सही है। ये प्रश्न तुम खुद अपने आप से करो। तुम्हें चाहिए कि पूरी बात को समझो। हम इस वक्त किताब के बारे में बात कर रहे हैं परंतु हम अपने काम के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे गुट में 2 काले हैं जिन्हें 2 गोरों के स्थान पर काम पर रख लिया गया है।
ड्रिक अपने बाप की बातों से प्रभावित हो जाता है। बाप कहता है, इसके पीछे एक चाल है, क्या सही नहीं कह रहा हूँ। इस पर ड्रिक कहता है, हाँ, इस तरह से मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था। बाप कहता है, ठीक है। ड्रिक कहता है, नहीं जानता। डॉक्टर स्वीनी कड़ाई से पेश आते हैं, ये कठिन है कि इंसान उनकी बात ना माने। शायद वो जो बातें करते हैं उनमें से कुछ। इतना कहकर ड्रिक चुप हो जाता है और उसके आगे कुछ नहीं बोलता। उसके बाद बाप कहता है, बेकार की बात ना करो। इस पर ड्रिक कहता है, हाँ, शायद। बाप कहता है, उससे सावधान रहना। ड्रिक कहता है, जी हाँ, जो बात आपने कहा है वो मैं समझ गया। बाप कहता है, शाबाश मेरे अच्छे बेटे, मुझे तुम पर गर्व है। इसके बाद फिल्म का फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है।
अमरीकी हिस्ट्री एक्स फिल्म के जिस भाग में उसका निचोड़ बयान किया गया है वो रंगीन है, परंतु फिल्म का फ्लैशबैक काला और सफ़ेद है। रंग के इस प्रकार का प्रयोग इस बात का सूचक है कि अतीत में ड्रिक, डेनी और उसके परिवार वाले अतीत में दुनिया को काले और सफ़ेद रंग में देखते थे। उस सफ़ेद और काले ने जिसने उनकी दुनिया को तबाह कर दिया है, परंतु डेनी अब दुनिया को रंगीन व वास्तविक देखता है, यानी उसने समस्त रंगों, जातियों और समुदायों व राष्ट्रों को स्वीकार कर लिया है।
श्रोताओं, अगर आपने इस फिल्म को देखा हो तो आपको अवश्य याद होगा कि ड्रिक अपने माता पिता, विशेषकर पिता के आचरण और उसके विचारों से बहुत प्रभावित होता है। ये ड्रिक का बाप है जो द्वेष का बीज अपने बेटों ड्रिक और डेनी के दिल में बोता है। फिल्म का ये सीन इस बात का सूचक है कि नस्लवाद की जड़ अतीत के लोगों और पहले की पीढ़ियों की सोच में थी, और वही पुराने लोगों व पीढ़ियों का व्यवहार है जो नई पीढ़ी में नस्लवाद को अमरीकी समाज में हस्तांतरित कर रहा है।